बालकृष्ण भट्ट ने दो उपन्यास लिखे, नूतन ब्रह्मचारी 1877 और 100 अजान और 1 सुजान 1892। दोनों ही शिक्षोपयोगी कथाएं हैं, दोनों में ही सत्संग की महिमा गाई गई है। नूतन ब्रह्मचारी का विनायक अपने अच्छे संस्कारों के कारण डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। 100 अजान और 1 सुजान एक ऐसे सेठ की कहानी है जो कुसंग में पढ़कर बिगड़ जाता है, किंतु सत्संग के कारण पुनः सुधर जाता है। परीक्षा गुरु की भांति यह उपन्यास भी हिंदी संस्कृत के नीतिपरक उद्धरणों से भरा पड़ा है। इसकी भाषा अलंकृत है। नूतन ब्रह्मचारी की भाषा में सहजता अधिक है। इतनी बातचीत विनायक और उन दिनों आदमियों से बाहर हुई। विनायक आगे हुआ और वे लोग उसके पीछे पीछे घर में चले। भीतर जाकर देखा तो घर में कोई बात अमीरी की नहीं, पर सफाई और सुथरापन हर वस्तु में झलकता है। भीतर जाकर उन दोनों साथियों को एक नाउम्मीदी सी हुई, क्योंकि जैसा बाहर से देखने में मकान भड़कीला मालूम होता था, वैसा भीतर कुछ भी सामान न था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी भाषा में जो प्रवाहमयता है वह परीक्षा गुरु में नहीं है। फिर भी यह अपेक्षाकृत सपाट उपन्यास है। इन प्रारंभिक उपन्यासों को देखने से पता चलता है कि रईस वर्ग अपनी अयासी और अकर्मण्यता में किस प्रकार ढह रहा है। उसके स्थान पर कर्मण्य, क्रियाशील और नवीन युगीन चेतना से संपृक्त पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था। नए समाज के निर्माण में आगे चलकर इसी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। मेहता लज्जाराम शर्मा के उपन्यास धूर्त रसिक लाल 1899 में भी कुसंग में पढ़कर एक बिगड़े हुए सेठ के सुधार की कहानी है। सेठ रसिकलाल की कुसंग में पढ़कर मद्यपान, वेश्यागमन, जुआ आदि के कुटेवों में फंस जाता है, पर पत्नी के प्रभाव से अंत में सुधर जाता है। मेहता के दूसरे उपन्यास स्वतंत्रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 में रमा और लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। पहली पाश्चात्य संस्कृति में पली हुई स्वच्छंद और दूसरी भारतीय संस्कृति में पली हुई संस्कार बद्ध। इसमें लक्ष्मी की शालीनता, पातिव्रत्य आदि को रमा की स्वच्छंदवादिता के विरोध में रखा गया है। इस तरह पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति से हीन ठहराया गया है। पुनर्जागरण काल तथा बाद में भी भारतीय संस्कृति पर बल दिए जाने के फलस्वरूप इस तरह के उपन्यास आए, पर पाश्चात्य संस्कृति पर आक्रमण करने के सिलसिले में लेखक श्रृंगारिकता के अत्यंत ओछे स्तर पर उतर आता है। आगे चलकर उन्होंने हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू आदि अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें मुख्यतः आदर्श हिंदुत्व की स्थापना की गई है। इस सिलसिले में राधा कृष्णदास का निसहाय हिंदू 1889 भी स्मरणीय है। इसमें गोवध समस्या और हिंदुओं की निसहायता तथा मुसलमानों की कट्टरता चित्रित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाट 1899 और अधखिला फूल 1907 में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों को चित्रित किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाट की नायिका जिस व्यक्ति से प्रेम करती है उससे उसका विवाह न होकर एक धनी किंतु अशिक्षित और दुराचारी व्यक्ति से हो जाता है। प्रेमी अपने आदर्श प्रेम के रक्षार्थ नायिका के पति को अच्छी राह पर ले आता है, किंतु नायिका विरह में घुलकर समाप्त हो जाती है। वस्तुतः इसमें प्रेम की समस्या न होकर अनमेल विवाह की समस्या है, क्योंकि वास्तविकता के रूप में इसी समस्या को लिया गया है और प्रेम आदर्श और उत्सर्ग मूलक होकर रह गया है। अधखिला फूल की देवदूती अपने सतीत्व की रक्षा करती हुई अपने सन्यासी पति को प्राप्त कर लेती है। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास श्यामा स्वप्न 1885 विवाह की परंपरा मूलक धारणा का विरोध करते हुए प्रेम को वरीयता देता है। प्रेम के आगे वर्ण का मूल्य उन्हें मान्य नहीं है। अपने उपन्यास में उन्होंने ब्राह्मण कन्या श्यामा और क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के प्रेम का चित्रण किया है, पर इस स्वच्छंदतावादी प्रेम को जिस रूपाकार में व्यक्त किया गया है वह इसके अनुरूप नहीं है। वस्तुतः यह रीतिकाल का परकिया प्रेम है, क्योंकि स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति रीतिबद्ध रूप में नहीं की जा सकती। लगता है नायिका ने नक्षिक वर्णन, आलिंगन, चुम्बन, विरह निवेदन, ऋतु वर्णन के लिए विषय वस्तु को माध्यम के रूप में चुना गया है। वस्तु और रूप का यह विरोध भी तत्कालीन मानस का विरोध है। नए विचार पुराने संस्कारों को बदल नहीं पाए थे। रीतिवादी ढांचा स्वीकार कर लेने के कारण जगमोहन सिंह का स्वच्छंद प्रेम औपन्यासिक न होकर वैचारिक बनकर रह जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनके प्रकृत वर्णन की इतनी प्रशंसा की है, वह उपन्यास के ढांचे में किसी प्रकार अपनी सार्थकता नहीं सिद्ध कर पाता है। यही नहीं, कादंबरी की शैली पर प्रकृति का जो आलेख प्रस्तुत किया गया है वह उसकी मौलिकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसकी भाषा शैली का एक नमूना लीजिए, उसकी कटी छटी कर छल्ला सी हो गई थी केहरी भी, जिसे देख अपने घर की देहरी के बाहर कभी नहीं निकला। ऐसी सुकुमारी जो बार के भार से भी लचती थी, ऐसी पत्री जो मुट्ठी में भी आ जाती थी। कई तो उसे देख भ्रम में पड़े थे कि लंक है कि नहीं या केवल अंग का ही संक है। नवजोबन नरेश के प्रवेश होते ही अंग के सिपाहियों ने बड़ी लूटपाट मचाई, पर यह न जान पड़ा कि कटी किसने लूट ली। इस तरह के वर्णनों से उपन्यास भरा पड़ा है। ये वर्णन रीतिबद्ध काव्य की कार्बन कॉपी है। वस्तु रूप का यह द्वैत सिंह जी के अपने संस्कारों और विचारों का भी द्वैत हो सकता है। दरबारी शैली में मुक्त भाव का अंत पाना संभव नहीं था। श्यामा स्वप्न के साथ अंबिका दत्त व्यास के आश्चर्य वृत्तांत 1893 और ब्रजनंदन सहाय सौंदर्योपासक 1912 की भी चर्चा की जाती है। श्यामा स्वप्न और आश्चर्य वृत्तांत में केवल इतना ही साम्य है कि दोनों स्वप्न कथाएं हैं। आश्चर्य वृत्तांत में एक व्यक्ति गया से काशी होते हुए चित्रकूट तक भ्रमण करता है। इसमें भी अलौकिक और विस्मया विभूत कर देने वाले दृश्यों की योजना प्रचुर मात्रा में है, किंतु इस बहाने वह भारतीय संस्कृति की प्रशंसा और विदेशी रंग में रंगे शिक्षित जोरू के गुलाम की निंदा करता है। इसका गद्य किंचित भावी संभावनाएं लिए हुए हैं। सौंदर्योपासक इस कालावधि में लिखा गया अकेला रोमांटिक उपन्यास है। उसकी सौंदर्योपासना में विवाह की समस्या नहीं है, बल्कि उस चित्तवृत्ति की समस्या है जिसे प्रेम कहते हैं। इसके फलस्वरूप उसकी प्रिया और पत्नी दोनों का अवसान हो जाता है और प्रेमजन्य वेदना को ढोने के लिए वह अकेला शेष बचता है। विरहानुभूति की तीव्रता के कारण इसमें श्यामा स्वप्न की अलंकृति नहीं है। सन 1891 ईस्वी में चंद्रकांता के प्रकाशन के साथ देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 तिलिस्म का जो करिश्मा लेकर आए, उससे हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में धूम मच गई। बहुत से लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। खत्री जी ने अपने समय के अर्ध शिक्षित जनमानस को पहचाना और उनके मनोरंजनार्थ उपन्यास लिखे। उपदेश से परे शुद्ध मनोरंजन की चमत्कार पूर्ण सामग्री का पाठकों ने अपूर्व स्वागत किया। पर प्रश्न होता है कि चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों की रचना क्यों हुई। प्रेमचंद के मतानुसार उस पर फारसी के तिलिस्म होशरुबा का प्रभाव है, पर ऐसा लगता है कि इसमें अस्तोन्मुख सामंतीय वर्ग का अंतिम खेल चित्रित किया गया है। देवकी नंदन ने भी प्रेमी प्रेमिका का परिणय कराया है, सदाचारी पात्रों को पुरस्कृत और दुराचारी को दंडित कराया है, पर पाठकों के हृदय पाठकों के ऊपर तिलस्म के खेलों का ही प्रभाव शेष रहता है। ऐयारों की बाजीगरी का सम्मोहन पाठकों को सहज ही मुग्ध कर लेता है। जिस तरह बाजीगर जमूरे को देखते देखते अदृश्य कर देता है, फिर दूसरे क्षण सामने खड़ा कर देता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, फिर जोड़ देता है, उसी प्रकार खत्री का ऐयार पाठकों को अनेक प्रकार के सब्जी बाग दिखाता है। कभी वह तहखाने में बंद ऐयारों के दर्शन करता है, कभी गहन कांतारों नदी नालों खोहों पहाड़ों की सैर करता है, कभी वह तहखाने में कैद नायिका को अंगूर खाते हुए देखता है, तो कभी उसका शव देखता है, फिर भी उसे जिंदा पाता है। यह सब देखकर पाठक हक्का बक्का हो जाता है। इसमें शुद्ध ऐयारी का होता है। मध्यकालीन शौर्य का स्थान ऐयारों ने ले रखा है। ऐयारों को तिलस्म का व्यूह तोड़ना पड़ता है। इस व्यूह की रचना अजीबो गरीब होती है। कहीं पत्थर की खूबसूरत पुतली ही है, तो कहीं बेहोश कर देने वाली दीवार। कहीं मसालों के बने सांप हैं, कहीं ऊपर से बहरा पड़ने वाले दरवाजे। इस भूल भुलैया में पड़ा पाठक भौचक्का हो जाता है। अयारी का बटुआ तो गजब की चीज है, उसमें एक दुनिया ही भरी रहती है। लख लखा इसी बटुए में पड़ा रहता है। बेहोश करने की बूटी भी इसी में मिल जाएगी और अदृश्य बनाने वाला गुटका भी। उन्होंने अपने उपन्यासों को विश्वसनीय बनाने की कोशिश भी की है। इस कोशिश का आधार था उनका अपना अनुभव। नौगढ़ में लकड़ी की ठेकेदारी करते समय वे पहाड़ी खोहों, दरियों, खंडहरों का अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके थे। इस अनुभव के आधार पर ही अपने वर्णों को वे किंचित विश्वसनीय बना सके हैं। मध्यकाल में सुंदरियों को प्राप्त करने के लिए राजपूतों में पारस्परिक युद्ध हुआ करता था। तिलस्मी उपन्यासों में भी राजकुमार सुंदरी राजकुमारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। फर्क इतना है कि मध्यकालीन राजपूत राजे स्वयं लड़ते थे, पर इन उपन्यासों के राजकुमारों की लड़ाइयां अयार लड़ते हैं। अयार वीर, उदार, स्वामी भक्त और नैतिक आचारों से युक्त होते हैं। तिलस्मों की इस दुनिया में घटनाओं का अद्भुत वैचित्र्य और श्रृंखला होती है। इनमें चरित्र नहीं, व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है, इसलिए एक पात्र को दूसरे पात्र से अलगाना कठिन है। इनमें जो भी क्रियाकलाप घटित होते हैं वे जीवन की वास्तविकताओं से अछूते और काल्पनिक होते हैं। घटनाओं को दूर तक फैले जटाजूट को समेट लेना भी बाजीगरी से कम नहीं है। इन तिलस्मी उपन्यासों का अपना महत्व चाहे जो हो, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में न तो इनसे कुछ जुड़ता है और न कुछ घटता है। दुर्गा प्रसाद खत्री तथा अन्य कई लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, किंतु केवल वायवीय कुतूहल को कब तक कायम रखा जा सकता है। खत्री के उपन्यासों की लोकप्रियता देखकर गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946 नए किस्म के उपन्यास, जासूसी उपन्यास लेकर हिंदी के क्षेत्र में अवतरित हुए। यद्यपि जासूसी उपन्यासों में तिलस्मी उपन्यासों की तरह बेपर उड़ने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी इन्हें तिलस्मी अयारी के सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता। सन 1898 में उन्होंने बंगला उपन्यास हीरार मूल्य शेखर धूली का हिंदी अनुवाद किया। इसे हिंदी के पाठकों ने काफी पसंद किया। फिर तो उन्होंने लगभग 200 उपन्यास लिखे और अनुदित किए। अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए उन्होंने एक पत्र जासूस 1900 निकाला, जो 30 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। पर गहमरी की जासूसी मोटे किस्म की जासूसी है। प्रायः उपन्यासों का कथानक कहीं पड़ी हुई लाश को लेकर शुरू होता है, अपराधी की खोज आरंभ हो जाती है, परंतु यह तलाश इतनी बचकानी लगती है कि जासूसी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। जिन प्रमाणों, प्रसंगों, घटनाओं के आधार पर जासूस अपराधी की तलाश करता है वे पूर्व निर्मित होती हैं और जासूस को इनका इल्हाम हो जाता है। जाहिर है कि तलाश की यह प्रक्रिया उतनी बुद्धिजन्य नहीं है जितनी कल्पनाजन्य है। उनके जासूस भेष बदलने की कला में इतने माहिर हैं कि देवकी नंदन खत्री के अयारों के कान काट लेते हैं। वजीरन बीबी का जासूस अजीबो गरीब बाजीगर है, वह भूत बन जाता है, अपराधी के सिर पर हाथ रखकर उसे अंधा बना देता है। यहाँ की गुप्त कोठरियां कम रहस्यात्मक नहीं है। खटका दबाया नहीं कि दीवाले नदारत, दूसरे खटके पर हाथ पड़ा नहीं कि दीवाले वापस। गहमरी के जासूस उपन्यास घटना प्रधान और काल्पनिक है। घटनाओं की विलक्षणता उनका मुख्य आधार है, पर विलक्षण की अतिशयता यथार्थ का अध्यास नहीं पैदा करती। कानन डायल ने जटिल जीवन के बीच होने वाले अपराधों को चुना है, इसी कारण शर्लक होम्स जैसे चरित्रों की सृष्टि हो सकी है। गहमरी ने जिस समय जासूसी उपन्यास लिखना आरंभ किया उस समय यहाँ की जिंदगी, विशेष रूप से बनारस की जिंदगी, काफी सरल थी, अतः उन्हें कल्पना का ही भरोसा था। कल्पना के भरोसे ऐसी कल्पना जो यथार्थ से कटी हुई हो, सपाट कथानकों और बाल बुद्धि वाले जासूसों की ही सृष्टि हो सकती है। इस कालावधि के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 केंद्रवर्ती उपन्यासकार माने जाएंगे। संख्या और परिमाण में उनके उपन्यास सर्वाधिक हैं। अपने समय में प्रचलित सभी तरह के उपन्यासों की उन्होंने रचना की, सामाजिक, अयारी, तिलस्मी तथा जासूसी। यही नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर उपन्यासों का एक नवीन आयाम उद्घाटित करने का श्रेय भी उन्हीं को है। इस काल के कुछ उपन्यास मुख्यतः शिक्षा मूलक हैं तो कुछ मनोरंजक मूलक, पर गोस्वामी के उपन्यासों में शिक्षा, धर्म और मनोरंजन तीनों का गठबंधन हुआ है। यद्यपि यह गठबंधन बिखरावपूर्ण और शिथिल है, जिस हिंदू पुनरुत्थानवाद की शुरुआत राधा कृष्णदास के उपन्यासों से हुई है, उसकी चरम परिणति गोस्वामी के उपन्यासों में दिखाई पड़ी। सन 1901 में उन्होंने उपन्यास मासिक पुस्तक निकालना आरंभ किया था। इस पत्रिका में केवल उन्हीं के उपन्यास प्रकाशित होते हैं। उसके मुख पृष्ठ पर छपा रहता था उपन्यासास्तु वांगमुखम। आचार्य शुक्ल ने उनके छोटे बड़े 65 उपन्यासों का उल्लेख किया है, पर वे सबके सब उपन्यास नहीं थे। इनमें कुछ कहानियां भी सम्मिलित हैं। कुछ उपन्यास बंगला से भी अनुदित हैं। सन 1889 में वे कलकत्ता के रद्दी खाने से बहुत सी बंगला पुस्तकें खरीद लाए थे और उनका अच्छा खासा उपयोग किया। सन 1887 में उन्होंने प्रणयिनी परिणय लिखा, किंतु यह उपन्यास न होकर कहानी है। वस्तुतः इसी को हिंदी की पहली कहानी मानना चाहिए। 1888 में त्रिवेणी उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो 1890 ईस्वी में बिहार बंधु में छपा। 1890 में हृदय हारिणी उपन्यास हिंदुस्तान दैनिक के कई अंकों में छपा। इसके बाद तो उनके उपन्यास उनके अपने ही मासिक पत्र में छपने लगे। गोस्वामी जी निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। उनके ऊपर सनातन धर्म का गहरा संस्कार था। इस संप्रदाय में मधुरोपासना का भी प्राधान्य था। वे सहृदय और रीति काव्य के प्रेमी थे। स्पष्ट है कि श्रृंगार उन्हें धर्म, विरासत और प्रकृति से मिला था, अतः उनके उपन्यासों का श्रृंगार प्रधान होना स्वाभाविक था। पर उन्होंने जिस हिंदुत्व की उसके संस्कारों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए है, वे मर चुके थे, अतः अर्थ में वे प्रतिक्रियावादी ही कहे जाएंगे। गोस्वामी जी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है। प्रेम एवं परागति उनका मंत्र था। सच तो यह है कि यह उनका मंत्र नहीं था, बल्कि हिंदू दर्शन में यह बराबर दोहराया जाता रहा है। भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र से बाहर यह कभी नहीं आया। जीवन में यह स्त्री पुरुष के प्रेम तक ही सीमित था। उनके परागति वाले प्रेम की स्थिति इससे भिन्न नहीं मानी जा सकती। प्रेम की अनिवार्य परिणति है विवाह। इस प्रेम में दुष्यंत शकुंतला जैसी कोर्टशिप का होना अनिवार्य था। इस सनातन धर्मी कोर्टशिप का परिणाम था विवाह। त्रिवेणी का नायक प्रेम महिमा को गुंता हुआ सनातन धर्म का गुणानुवाद भी करता जाता है। हिंदी की उन्नति की बुनियाद शर्त है सनातन रीत्यनुसार सनातन धर्म में देवी देवियों की उन्नति। त्रिवेणी का समापन नायिका की गोद में खेलते हुए एक बालक के चित्रण द्वारा होती है। कुटीर वासिनी की नायिका और प्रेममयी की अमला और शांति की गोद भी भरी पूरी हो जाती है। प्रेम के माध्यम से ही वह पाप का परिणाम बुरा और पुण्य का परिणाम भला बतलाता है। मालती माधव या मदन मोहन का माधव महात्मा है, उसे माधवी मिलती है। हरिहर प्रसाद पापात्मा है, वह मकान गिरने से मर जाता है, उसकी लाश डोम फेंकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी के उपन्यासों को साहित्यिक कोटि की रचनाएं माना है। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। संभवतः अपने समय की विविध घटना प्रबंध और उपन्यासिक पद्धतियों को समेट कर लंबे कथा सूत्रों में बांधने के कारण ही शुक्ल जी ने उनकी रचनाओं को साहित्यिक कोटि में माना है। इनके अतिरिक्त इस समय के अन्य उपन्यासकारों में कार्तिक प्रसाद खत्री, बलदेव प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद गुप्त, जयरामदास गुप्त, ईश्वरी प्रसाद शर्मा आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस समय के उपन्यासों में जो मूल वृत्ति दिखाई पड़ती है वह है हिंदू पुनरुत्थानवाद। इसकी अभिव्यक्ति हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि उपन्यासों में देखी जा सकती है। बंकिम चंद्र के दुर्गेश नंदिनी 1865 और आनंद मठ 1875 उपन्यासों की लोकप्रियता के मूल में यही तथ्य निहित है। इस अवधि के मराठी उपन्यासों मंजू घोसा 1868, विचित्रपुरी 1870, चंद्रप्रभा विरह वर्णन 1873 में भी अद्भुत चमत्कारों का समावेश मिलेगा। उनका परिवेश दरबारी और भाषा अलंकृत है। उर्दू उपन्यासों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी। मौलाना अब्दुल हलीम सरर के संबंध में एहतेशाम हुसैन लिखते हैं, सरर के अधिकतर उपन्यास मुसलमानों के प्राचीन जीवन के संबंध रखते हैं, जिनमें मुसलमानों की वीरता, उदारता और धार्मिक दृढ़ता के चित्रों को प्रचार की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में संकीर्णता झलकती है। सरर के अधिकांश उपन्यास एक ही रंग के और एक ही शैली में लिखे हुए मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि एक उपन्यास के पात्र दूसरे में रख दिए जाए तो कोई बड़ा अंतर न होगा। नवयुग और अनुभव रहित रोमानी स्वभाव रखने वालों के लिए उनके हल्के फुल्के उपन्यासों में आनंद का बड़ा सामान मिल सकता है, परंतु उपन्यास को जीवन के मूल आदर्शों और जीवन के बड़े संघर्षों का चित्रण करने वाला साहित्यिक रूप मानने वालों को उनके यहाँ बहुत कमी मिलेगी। उनके प्लाट ढीले, उनके पात्र सपाट और उनका उद्देश्य साधारण होता है। उनके उपन्यासों के शीर्षक भी हिंदी उपन्यासों से मिलते जुलते हैं। हुस्न का डाकू, मंसूर मोहना, जवाले बगदाद आदि। इन तीन दशक के उपन्यासों में रोमांस और सुधारवादी यथार्थ का मिला जुला रूप दिखाई देगा। रोमांस का उद्देश्य मनोरंजन था तो सुधार का उद्देश्य अपनी रीति नीति, विचार, आचार और संस्कारों का संरक्षण। रोमांस मध्ययुगीन प्रवृत्ति से बोझिल था तो सुधारवादी यथार्थ रूढ़िवादी संस्कारों से। नारी के नाम पर जो समस्याएं इन उपन्यासों में उठाई गई हैं वे मुख्यतः वेश्या जीवन, नारी शिक्षा, अनमेल विवाह, स्त्री स्वतंत्रता आदि से संबद्ध हैं, किंतु इनका समाधान पूरे ढंग पर ही किया गया है। इस दृष्टिकोण का असर उपन्यासों के कथा संगठन, चरित्र चित्रण, वातावरण निर्माण, भाषा शैली आदि पर भी पड़ा है। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को छोड़कर प्रायः सभी उपन्यासकारों ने कथा वस्तु के निर्माण में घटनाओं का अंबार लगा दिया है। घटनाएं भी एक से एक विचित्र, रोमांचकारी और विस्मया वह चरित्र वर्गों में बटे हैं। अच्छे और बुरे उनके कार्यों का परिणाम भी नियत है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, इसलिए बीच बीच में उपदेशात्मक श्लोक, छंद, कथा आख्यायिका आदि तो डाल दिया गया। वे छंद चरित्रों की वर्गगत विशेषताओं को पुष्ट करते, यद्यपि भारतेंदु और उनकी मंडली ने भाषा को एक सीमा तक अभिव्यक्ति योग्य बनाया, पर अभी वह कथा कहने के योग्य नहीं बन पाई थी। उपदेशों को रुक्षता, रोमांसों की उहात्मकता, सस्ते मनोरंजनों के चटकीलेपन के केचुल को छोड़कर अभी वह अपेक्षित सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकी थी। कहानी सन 1850 से 1900 तक उपन्यास कहानी का भेद स्पष्ट नहीं किया जा सका था। समस्त कथा साहित्य को उपन्यास कहने का चलन था। एक कहानी कुछ आपबीती, कुछ जगबीती को कदाचित उपन्यास के रूप में लिखा जा रहा था। भारतेंदु ने कहानी की संज्ञा दी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जो सरस्वती में 1900 कहानी के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी, उसे भी गोस्वामी ने उपन्यास कह कर ही प्रकाशित किया है। इससे स्पष्ट है कि अभी हिंदी में उपन्यास कहानी के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकी थी। हिंदी के पहले कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी ही है। प्रणयिनी परिणय, जिसे उन्होंने उपन्यास कहा, हिंदी की पहली कहानी है। यह 1857 में लिखी गई थी। इसमें दो प्रेमियों की कहानी कही गई है। प्रेमी प्रेमिका के घर में प्रविष्ट होने का उपक्रम कर ही रहा था कि राजा द्वारा चोर समझकर पकड़ लिया गया, किंतु उसके प्रगाढ़ प्रेम का परिचय पाते ही उससे दोनों का ब्याह करा दिया। इस पर निश्चय ही कथा सरित सागर का प्रभाव है। इसकी शैली पुरानी है, समापन भरत वाक्य से हुआ है, पर यदि कहानी में एक ही मूल प्रेम प्रेरक भाव होता है तो निश्चय ही यह हिंदी की आदि कहानी ठहरती है। इसमें जन जागृति का भी आंशिक चित्रण हुआ है। तत्कालीन पुलिस के अत्याचारों को भी उभारा गया है। भाषा अलंकृति मूलक है, बीच बीच में विरह निवेदन है और उपदेश का भी सन्निवेश है। कुछ लोग माधव राव सप्रे की वो टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। गोस्वामी की इंदुमती 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। इंदुमती की भाषा शैली बहुत कुछ बदली हुई है, अनलंकृत है। इसका आरंभ और विकास अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक और अधिक स्वाभाविक पद्धति पर चलता प्रतीत होता है। यद्यपि इस जासूसी कहानियों को स्पष्ट प्रभाव है, आजमगढ़ देवनगर स्पष्ट प्रभाव है, अजयगढ़ देवगढ़ आदि नाम भी जासूसी कथा साहित्य से ही लिए गए हैं। जिस रहस्यात्मक रीति से इंदुमती का पिता विंध्य के जंगलों में निवास करता है और जिस ढंग से उसके सशस्त्र सहचर प्रकट होते हैं, वह सब कुछ जासूसी कथाओं की चमत्कारिकता से मिलता जुलता है। जासूसी भी कथाएं कहानियां हैं। कथानक साकंक्षता एकान्विति आदि की दृष्टि से इनको आगे की कहानियों से जोड़ा जा सकता है। सामान्यतः इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मान लिया गया है। आलोचना जातीय जीवन की अनिवार्य मांग है। साहित्य की कोई विधा कविता नाटक उपन्यास निबंध अतीत का दस्तावेज नहीं है, वह वर्तमान के लिए जीवंत शक्ति है। आलोचक अपनी विवेचना द्वारा रचनात्मक साहित्य को अपने समसामयिक जीवन के संदर्भ में देखता है। सही तो यह है कि अपने समय के साहित्य की आलोचना करना आलोचक का मुख्य कार्य है। इस कार्य की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट से होती है। कालक्रम की दृष्टि से वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। संस्कृत में उच्च कोटि की सैद्धांतिक आलोचनाएं लिखी गई पर व्यवहारिक आलोचना लिखने पर आचार्यों का ध्यान नहीं गया। टीका ग्रंथों में जहां तहां व्यवहारिक आलोचनाएं दिखाई देती हैं पर पुस्तकों पर स्वतंत्र आलोचनाएं नहीं लिखी गई। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ भी सैद्धांतिक ही हैं जो संस्कृत के ग्रंथों पर आधारित हैं। भट्ट जी संस्कृत के पंडित थे, उनका अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। राजनीति ने उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। गरीबी का साधारण संकट भी उन्हें झेलना पड़ा था, किंतु इससे उनकी आस्था में कहीं स्खलन नहीं आया। राजनीति धर्म भाषा आदि के प्रति उनकी दृष्टि यथार्थवादी थी। उनके मत से चाहे धर्म संबंधी आदि एकता से आप और तरह का लाभ माने पर देश की उन्नति और वास्तविक भलाई करने का द्वार हम राजनीतिक एकता को ही मानेंगे। वे जीवन के अत्यधिक आस्थावान थे, जीवन के प्रति अत्यधिक आस्थावान थे, इसलिए जगह जगह अतीतोन्मुख हिंदू समाज और विरक्त वेदांतियों को आड़े हाथों लिया है। इस लौकिक जीवन के प्रति आस्थावान होने के कारण वे साहित्य को सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। समालोचना को उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है, जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वह सब भाव उसके उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। कहना न होगा कि अपने समय के साहित्य की आलोचना में उन्होंने अधिक दिलचस्पी ली। रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध उन्होंने ही पहले पहल आवाज उठाई। हिंदी की मध्यकालीन भक्ति कविता पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। संस्कृत के कवियों पर अत्यंत परिचयात्मक ढंग से लिखा गया है। अपने समसामयिक साहित्य पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, वे ही हिंदी आलोचना की विकास यात्रा के आरंभिक बिंदु हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को पहली ट्रेजिडी कहना उनकी पकड़ का सबूत है। परीक्षा गुरु के संबंध में उन्होंने बताया है कि इसकी भाषा और प्लाट बंदिश दोनों सराहनीय है, किंतु इसकी उपदेश बहुलता इसकी सबसे बड़ी त्रुटि है। ग्रंथकर्ता महाशय को अनेक प्रकार के उपदेश वाक्य और विज्ञान चातुरी प्रकट करना था तो गुलदस्ते मखलाक या विधाकुर के ढंग की कोई पुस्तक बनाते, पर भट्ट जी आलोचना का वास्तविक स्वरूप संयोगिता स्वयंवर की सच्ची आलोचना से मिलता है। कथानक चरित्र चित्रण कथोपकथन देशकाल उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जो आलोचना प्रस्तुत की गई वह भट्ट जी के नए दृष्टिकोण की द्योतक है। यद्यपि नाटकों का ढांचा अभी बहुत कुछ पुराना था, पर युगीन प्रवृत्तियों की मांग के फलस्वरूप भट्ट जी ने आलोचना का मान बदल दिया। आरंभ में ही उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐतिहासिक पुरावृत्त और ऐतिहासिक नाटक में अंतर होता है, लेकिन लाला भगवान दी ने इस अंतर को नहीं समझा। पुरावृत्त को ऐतिहासिक नाटक में रूपायित करने के लिए जिस कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है वह लाला जी में नहीं थी। चरित्र चित्रण की बारीकी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने बताया है, हमने जहां तक नाटक देखे उनमें पात्रों की व्यक्ति कैरेक्टराइजेशन के भिन्न भिन्न होने से ही नाटक की शोभा देखी, पर आपके पात्र सब एक ही रस में सने उपदेश देने का हबस में लथर पथर पाए गए और उस रस में आप ही की विधा के प्रकाश का जहर भरा है। जाहिर है कि वे नाटक में एक ही चेहरा नहीं देखना चाहते, अर्थात वे चरित्रों में व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के आकांक्षी हैं। तथ्य तो यह है कि प्रसाद के पहले नाटकों के चरित्रों को व्यक्तित्व नहीं प्राप्त हो सका। कथोपकथन की अस्वाभाविकता पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। संयोगिता का कथोपकथन न तो नाटकगत परिस्थिति के अनुकूल है और न भारतीय संस्कृति के। प्रेम के संबंध में उसकी उक्तियां प्रेम का मखौल उड़ाती हैं। इस तरह के कथोपकथन न कथानक के विकास में योग दे पाते हैं और न चारित्रिक विकास में। बीच बीच में पद्यों के अमर्यादित प्रयोग पर चिढ़कर भट्ट जी कहते हैं, हम समझते हैं ग्रंथकार महाशय बीबी संयोगिता को पंडित प्रताप नारायण मिश्र के कली कौतुक वाली शराब खोरों वाली महफिल में भेज देते हैं। देते तो शराब की तारीख में सबसे 20 संयोगिता की ही स्पीच रहती। अंत में भट्ट जी कहते हैं कि हाय हाय, संयोगिता पर भरपूर शामत सवार हुई जो उसके बारे में नाटक लिखने का हौसला आपके मन में बढ़ा। भट्ट जी की आलोचना में व्यंग्य और कटुता जरूरत से ज्यादा उभर आए हैं, फिर भी उसके दोष पक्ष पर विचार करने में त्रुटि नहीं आई है, लेकिन सब मिलाकर यह एकांगी हो गई है। प्रेमघन दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने आनंद कादम्बिनी में आलोचना का सूत्रपात किया। भट्ट जी के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना देखकर उन्होंने भी इसे आलोच्य विषय बनाया। प्रेमघन की आलोचना पुरानी किस्म की है, उन्होंने मुख्यतः रस और संधियों की दृष्टि से इसकी आलोचना की है। इस पुस्तक में उन्होंने अनेक दोष दिखाए हैं। इसमें यह नहीं पता लगता कि वीर और श्रृंगार कौन अंगी है, छंद और अलंकार सदोष हैं, कुछ गर्भांक व्यर्थ हैं, पद्यों में कालिदास और शेक्सपियर की चोरी की गई है, निर्वहण संधि का निर्वाह नहीं हुआ है। भट्ट जी में जो मौलिकता और क्षमता दिखाई देती है वह प्रेमघन में नहीं है। इस काल में भारतेंदु ने नाटक का सैद्धांतिक आलोचना लिखी, पर उसका स्वर पुराना ज्यादा है नया कम। ब्रजभाषा की काव्य परंपरा। गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को जल्दी स्वीकार कर लिया गया, किंतु पद्य के क्षेत्र में इसकी स्वीकृति में विलंब लगा। हिंदी में गद्य की कोई परंपरा नहीं थी, इसलिए वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली के व्यवहार को लेकर कोई द्वंद्व या विवाद नहीं उठा। पर ब्रजभाषा की सुदीर्घ काव्य परंपरा को सहसा छोड़ देना संभव नहीं था। ब्रजभाषा काव्य का माधुर्य अभिव्यंजना शक्ति उस समय की खड़ी बोली में कहाँ मिलती, भावना के स्तर पर भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। उस समय ब्रजभाषा काव्य की अखंड परंपरा में अगली कड़ी के रूप में थी। उनकी दो कोटियां की जा सकती है। पहली कोटि में वे लोग आएंगे जो विषय और भाषा दोनों में परंपरानुगामी थे। उनमें कुछ राजा या रईस आश्रित कवि, कुछ राजे और कुछ भक्त थे। दूसरी कोटि उन लोगों की थी जो ब्रजी में कविता करते थे, लेकिन उनके विषय में वैविध्य था और वे कभी कभी खड़ी बोली में भी पद्य रचना का प्रयोग किया करते थे। इन लोगों में मुख्यतः भारतेंदु मंडल के लोग थे। पहली कोटि में सेवक महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ दास, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह, लच्छीराम आदि आते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों में प्रमुख हैं बाबा सुमेर सिंह, साहब जादे, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण वर्मा, बलवीर, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास। सेवक सरदार लच्छीराम, बेनी द्विज और हनुमान रीतिकालीन परंपरा के दरबारी कवि थे। लच्छीराम को छोड़कर शेष का संबंध काशी और रामनगर दरबार से था। सेवक 1815 से 1881 असनी वाले प्रसिद्ध ठाकुर के प्रपौत्र थे और काशी के रईस हरिशंकर के आश्रित थे। ये काशी राज ईश्वरी नारायण सिंह के भी कृपा पात्र थे। दोनों की प्रशंसा में उन्होंने कवित्व लिखे हैं। उन्होंने वागविलास नाम का नायिका भेद ग्रंथ भी बनाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक में उनके कुछ सवैये संग्रहित हैं। अज्ञात यौवन का यह चमत्कार पूर्ण उदाहरण देखिए। देखिए आनि कछु दीन ते, उर से उठे व्याधि के अंकुर वारे। कीजिए बेग उपाय न तो, दुख पाए हैं आगे भरे पर भारे। हो प्रिय सेवक प्राण तुम्हें, सुख दे हैं अनोखे विरंचि सवारे। वीर अधीर क्यों होत अरी, पीर सहेंगे विलोकनि हारे। सरदार ईश्वरी नारायण सिंह के दरबारी कवि थे। इस काल के ब्रजभाषा कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। केशवदास के दो ग्रंथों कविप्रिय और रसिकप्रिय की जो टीकाएं उन्होंने लिखी हैं, वे उनकी ब्रजभाषा काव्य की पकड़ की द्योतक हैं। ब्रजभाषा काव्य पर उनका अच्छा अधिकार था। बाबा रघुनाथ दास रामसनेही अयोध्या के महंत थे। उन्होंने रामचरितमानस के ढंग पर विश्राम सागर लिखा। ललित किशोरी और ललित माधुरी वैसे बंधु लखनऊ निवासी थे। ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे थे। सच्चे भक्त थे। उनकी कविता में भक्त हृदय की सरलता और माधुरी पाई जाती है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के मेघदूत का पद्यानुवाद किया। इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सिखरिणी, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। सवैया और घनाक्षरी बहुत सरस बन पड़े हैं। शकुंतला नाटक के बीच बीच में आए हुए पद्यानुवाद का लालित्य भी प्रशंसनीय है। लच्छीराम, बेनी द्विज, हनुमान आदि रीतिकालीन ढर्रे के कवि थे। इस सिलसिले में गोविंद गिल्लाभाई का नाम इसलिए उल्लेखनीय है कि गुजराती होते हुए भी उन्होंने ब्रजी में रचनाएं की। लच्छीराम देव की भांति बहुत से राजा रईसों के दरबारों में भटकते रहे। कभी तो वे अयोध्या नरेश द्विजदेव के यहाँ थे, कभी बस्ती के राजा शीतला बक्स सिंह के यहाँ, तो कभी दरभंगा दरबार की शोभा बढ़ाते रहे। कभी गिद्धौर दरबार में, कभी पूर्णिया दरबार में दिखाई देते थे, तो कभी काशी के कवि समाज में। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। मान सिंहाष्टक, प्रताप पर रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, रावणेश्वर, कल्पतरु, कमलानंद, कल्पतरु उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। लच्छीराम 1841 से 1904 नाम के सात कवि हुए हैं, किंतु उनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि जिला बस्ती वाले लच्छीराम की ही है। उनका जन्म बस्ती जिला के शेखपुरा गांव में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में लच्छीराम ने अयोध्या नरेश मानसिंह द्विजदेव से भी भेंट की और उन्हीं के दरबार में रहने लगे। वहां पर उनका संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ। प्रत्येक राजा के प्रत्यर्थ कवि ने एक एक रचना की। प्रेम रत्नाकर राजा बस्ती के नाम पर, महेश्वर विलास राजा रामपुर मथुरा, सीताराम सीतापुर के नाम पर, रामणेश्वर कल्पतरु, गिद्धौर नरेश रामणेश्वर प्रसाद सिंह के नाम पर मुनीश्वर कल्पतरु, मुल्लापुर नरेश के नाम पर रघुवीर विलास, गुरुप्रसाद सिंह गिद्धौर के नाम पर लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, दरभंगा नरेश के नाम पर प्रताप रत्नाकर, प्रताप नारायण सिंह अयोध्या नरेश के नाम पर रचे गए, राम रत्नाकर मान सिंहाष्टक और प्रताप रसभूषण की रचना भी उन्होंने की, किंतु ये ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। वर्ण विषय की दृष्टि से उनके ग्रंथ को दो कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि में वे ग्रंथ आएंगे जिनमें रस तथा उनके भेदों का वर्णन किया गया है। दूसरी कोटि की पुस्तकों में अलंकारों, शब्द शक्तियों आदि को वर्ण विषय बनाया गया है। रीतिकाल के आचार्यों की भांति लच्छीराम ने भी काव्यशास्त्र संबंधी कोई मौलिक उद्भावना नहीं की है, पर लच्छीराम का कवि रूप रीति काव्य की तरह सरस श्रृंगारिक है। ब्रजभाषा पर उनका व्यापक अधिकार था, यद्यपि पद्माकर की तरह अरबी फारसी के शब्दों का भी वे बेधड़क प्रयोग करते थे। वस्तुतः वे रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आखिरी कवि थे। बेनी द्विज और हनुमान लक्ष्मीराम की तरह आचार्य नहीं थे, पर उनकी रचनाएं रीति काव्य की हासोन्मुखी परंपरा के मेल में हैं। कुछ उदाहरण देखिए, रैन जगे तुम काहू के साथ कहे रति चैन भय अति आरसी, रावरे ओठ रहियो रमी भौर सो मेरे हिये में गड़ावती आरसी, नैकुन आवत लाज अजो हनुमान वह तिय नैनन आरसी, बातें बनावत काहे लखी किन हाथ के कंकन को कह आरसी हनुमान, अपवाद को किनु कीबो करो हम नैकु नहीं सक मानती हैं, वही छल छबीले की चाहन ते द्विज प्रेम की बारूनी छानती हैं, वे फुकी के पाम धरे सिगरी अपने को सदा जे बखानती हैं, नहीं काज भली ओ बुरी ते हम जानती हैं कि अजानती हैं। बेनी द्विज, भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु तथा उनके मंडल के कवियों ने गद्य के माध्यम से जीवन की तत्कालीन समस्याओं को साहित्य से जोड़ा, पर कविता के क्षेत्र में वे परंपरा को नहीं छोड़ सके। उनकी अधिकांश कविताएं परंपरा भुक्त हैं, फिर भी विषय की दृष्टि से उनमें नवीनताओं का सन्निवेश हुआ है। इस नवीनता के आधार पर ही खड़ी बोली की इमारत खड़ी हो सकी। टीएस इलियट ने लिखा है कि श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है। कवि हरिश्चंद्र में पूर्ण मध्यकालीन परंपरा को देखा जा सकता है। यद्यपि वे बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने राम काव्य और जैन काव्य भी लिखा। एक खास संप्रदाय से लगाव होते हुए भी उन्हें किसी धार्मिक संप्रदाय से द्वेष नहीं था। उनमें कहीं संतों का फक्कड़पन, मस्ती और जीव जगत के प्रति नस्वरता का भाव मिलता है, तो कहीं सगुणों पासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रतिपत्ति। उन्होंने संप्रदाय सापेक्ष कवि काव्य भक्ति सर्वस्व, वैसाख महात्म्य आदि लिखा, तो संप्रदाय काव्य की भी रचना की, किंतु सब मिलाकर उनकी धार्मिक रचनाओं में युगलोपासना का रंग अधिक है। चीरहरण, गोवर्धन, रासलीला, मानलीला, दानलीला, पनघट लीला, छद्म लीला आदि लीलाओं की भरमार है। इन पर संत कबीर, भक्त, सूर, तुलसी, मीराबाई की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। कुछ उदाहरण देखिए, हमन है मस्त मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की श्रृंगारिक कविताएं भी उन्हें विरासत में मिली थी। उनका अपना वातावरण भी बहुत कुछ दरबारी था, इसलिए श्रृंगारिक कविताओं के साथ समस्या पूर्ति भी उनके समकालीन कवियों का व्यसन था। भक्तिपरक रचनाओं में कतिपय स्थलों को छोड़ जीवन का स्पंदन अत्यंत क्षीण है, किंतु श्रृंगारिक कविताओं में जो सरसता मिलती है वह उनकी अपनी है। इस दृष्टि से वे मतिराम देव, घन आनंद, पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने अपनी आदत से लाचार होकर उनकी श्रृंगारिक कविताओं को नायिका भेद के ढांचे में ढालने की कोशिश की है। नायिका भेद खोजने वाले को वह कहाँ नहीं मिलेगा। कुछ उदाहरण लीजिए, ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। भारतेंदु में जो अंतर्विरोध दिखता है, उसका कारण इस विरासत के प्रति उनका गहरा लगाव है। उनके इस मध्यकालीन संस्कार और नई युग चेतना में काफी कसमकस होती है। राज्य भक्ति, देशभक्ति, गद्य की भाषा, पद्य की भाषा, आस्तिकता, नास्तिकता का अंतर विरोध, पुरातन और नए संस्कारों का अंतर विरोध है। सिसुताई अजौन गई तनते तौजोवन ज्योति बटोरे लगी। सुनिके चरचा हरिचंद की कान कान कछुक दे भौ हम मरोरे लगी। बची सासु जेठानी ने सौ पियते दूरी घूंघट में दृग जोरे लगी। दुलही उलही सब अंगनते दिन द्वै तपियूस निचोरे लगी। कूके लगी कोयले कदम्बन पै बैठी फेरी की धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। देखी के संयोगी जान ही हरसे लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी। लखी हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। बदन निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। वरुणी पे थिरे न झपे उझपे पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। लाज समाज निवारी सब प्रण प्रेम को प्यारे पसारन दीजिए। जानन दीजिए लोगन को कुलटा कही मोही पुकारन दीजिए। त्यों हरिचंद सब भय टारी के लालन घूंघट टारन दीजिए। छाड़ी संकोचन चंद मुख भरी लोचन आज निहारन दीजिए। छंदों में रोला छप्पे दोहा चौपाई पद कवित सवैया गजल आदि के प्रयोग किए। भक्ति परक रचनाओं में सरसता और रीति काव्य पद्धति पर लिखी गई रचनाओं में रमणीयता, खुलापन और रोमानी स्पर्श उनकी विशेषताएं हैं। मध्यकाल की प्रायः सभी प्रचलित काव्य शैलियों और छंदों में उन्होंने रचनाएं की। भक्तिकाल की यह शैली और रीतिकाल की मुक्तक शैली, आदिकाल की छप्पे रोला शैली और खुसरो की मुकरी शैली भी अपनाई है। उन्होंने कथा निबंध काव्य भी लिखे जिनका विकास मैथिली शरण गुप्त ने किया। लोक काव्य शैली की रचनाएं उनकी नवीन पद्धति थी जिनके प्रति बहुत बाद में लोग सचेत हुए। गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है और पद्य उनके पुरातन संस्कारों का। यो पद्य में भी उन्होंने अनेक सामाजिक विषयों का समावेश करके उसे नई दिशा दी और ब्रजी को गिने चुने रसों के घेरे से बाहर की व्यापक भावभूमि से परिचित कराया। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने विरहा, कजली, लावनी, खेमटा आदि लिखकर सिद्ध कर दिया कि वे लोग से बाह्य अर्थ में संपृक्त थे। इसका ब्रज भाषा की भाषा शैली पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। यदि तुलना करके देखा जाए तो परंपरा प्रयुक्त अनेक रूढ़ शब्दों का भारतेंदु ने परित्याग कर दिया था। फारसी अरबी के अत्यंत प्रचलित शब्दों ही को उन्होंने अपनी भाषा में स्थान दिया। उदाहरणार्थ मुराद, अरज, अदब आदि अरबी बेहोशी, नसीली, जुल्मी, परवाना आदि अंग्रेजी के टिकस, सिविल, लिबरल, वार्ड कानून आदि अंग्रेजी के शब्दों को भी यथास्थान प्रयुक्त किया गया है। ग्रामीण शब्दों के बारे बिगर, मछरिया आदि को ब्रजभाषा का अंग बना उसे संपन्न किया। उनकी लोकोक्तियां जैसे दुकान की फीकी मिठाई, हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप कुठार मैं दीनों वगैरह, ठाकुर की लोकोक्तियों की याद दिलाती है। मुहावरों का भी उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है। जो कविताएं उनके अधिकांश नाटकों में आई हैं, वे भक्ति तथा रीतिपरक रचनाओं से भिन्न हैं। उनमें अतीत के गौरव, देश की दुर्दशा, भारतवासियों की हीनता आदि का कहीं क्षोभपूर्ण तो कहीं निरीहतापूर्ण वर्णन है। इन्हें भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी और अंधेर नगरी में देखा जा सकता है। इनमें से जो कविताएं नाटकीय परिस्थितियों के संदर्भ में लिखी गई हैं, वे अधिक भावपूर्ण बन पड़ी हैं। यूं उनमें से अधिकांश इतिवृत्तात्मक है। भारतेंदु के समसामयिक कवियों और सहयोगियों में बाबा सुमेर सिंह साहबजादे, जो सिख गुरु थे, रीति काव्य लिखते रहे। प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर में लावनिया लिखते थे। श्रृंगार विलास में उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं दंगल खंड आल्हा ब्रैडला स्वागत लोकोक्ति शतक सौ कहावतों पर देशभक्त पर कविता लोकोक्ति शतक संगीत शाकुंतल दीवाने बरहमन उर्दू कविताओं का संग्रह और रसखान शतक उनकी किताबें हैं। उनकी कुछ समस्या पूर्ति बहुत ही सरस हैं। धुरवान की धावन सावन में की पूर्ति देखिए। सिर चोटी गुथावती फूलन सो मेहंदी रची हाथन पावन में परताप त्यो चूनरी सूहि सजी मनमोहति हावन भावन में निस्दोष बितावती पीतम के संग झूलन में और झुलावन में उन्हीं को सुहावन लागत है धुरवान की धावन सावन में। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी राजभक्ति देशभक्ति परक काव्य लिखे। कांग्रेस की जय नाम की कविता कांग्रेस की स्तुति में है। जिस प्रकार उनके निबंधों में हास व्यंग्य भरा पड़ा है उस प्रकार उनकी कुछ कविताओं में भी उसके प्रचुर रंग हैं। वे अपने व्यंग में भारतेंदु की तरह मीठी चुटकियां नहीं लेते बल्कि तलखी भर कर तीखा प्रहार करते हैं। जन्म सुफल कब होए में लॉर्ड रिपन गौरांग देव पादरी साहब भैंडराज गोरंड दास हजरत सेठ अमीर राजा बुढ़ऊ लिपिटन पुरोहित कनवजिया आलसी बहुला भक्त आदि की उक्तियां द्रष्टव्य हैं। गोरंड दास उवाच जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। सेठ उवाच बुद्धि विद्या बन मनुजता छुवही न हम कह कोए लक्ष्मीनिया घर में बसे जन्म सुफल तब होए। प्रेमघन भी भारतेंदु के परम प्रशंसकों में थे। उन्हें एक प्रकार से भारतेंदु का अनुकर्ता कहना चाहिए। भारतेंदु के अपवर्ग और पुरुषोत्तम पंचक की तरह ब्रजचंद पंकज लिखा बकरी विलाप की तरह पितर प्रताप लिखा उनके श्रृंगारिक कवित्त सवयों की तरह कवित्त सवय लिखे जो प्रेम पीयूष वर्षा में संकलित हैं। भारतेंदु रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे तो प्रेमघन अब्र उपनाम से। भारतेंदु ने तरजीह बद्ध लिखा तो उन्होंने साखी बद्ध लिखा। मिर्जापुर कजली का गढ़ समझा जाता है। प्रेमघन ने कजली चैता कबीर आदि की रचनाएं भी की। उन्होंने भारतेंदु की भांति राजभक्ति और देशभक्ति संबंधी कविताएं भी लिखी। दादा भाई नैरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य होने पर उन्होंने मंगलासा अथवा हार्दिक धन्यवाद लिखा जिसमें देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का सन्निवेश हुआ है। उनकी रचनाओं का संग्रह प्रेमघन सर्वस्व में हुआ। रीति काव्य शैली में लिखा हुआ उनका एक सवैया देखिए सजित सूहे दुकूलन झूलन झूलत बालम से मिली भामिनिया बरसावत सो रसराग मलार अलापत मंजु कलामिनिया बीती है कि ही भातिन सावन की यह कारी भयंकर जामिनिया पन प्रेम पिया नहीं आए दसो दिसी है दम के दुरी दामिनिया। किंतु प्रेमघन का महत्व इस पिष्ट पेशण में नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर वे भारतेंदु के समकालीन कवियों में सबसे अधिक समसामयिक हैं। उनकी समसामयिक रचनाएं परिमाण में भी अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन परिमाण में अधिक होने पर भी वे समसामयिक विषयों पर आधारित इतिवृत्तात्मक काव्य परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते। दो खंड काव्यों जीर्ण जन पद और अलौकिक लीला की सर्जना अवश्य उनकी ऐतिहासिक देन है जो भविष्य के रोमानी और इतिवृत्तात्मक खंड काव्यों की दिशा निर्देश करती है। जीर्ण जनपद का दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। यह प्रेमघन की जन्मभूमि है। इस काव्य में दत्तापुर ग्राम के संबंध में कवि के स्मृति चित्र वर्णित है। इसमें ग्राम के प्राचीन वैभव और आधुनिक दुर्दशा को चित्रित किया गया है। प्रेमघन गांव को उसके समाज को उसके त्योहार आदि को जिस रूप में अनुभूत किया था उसका यथार्थ चित्र उभारा है। संभव है प्रेमघन को गोल्डस्मिथ के उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज से प्रेरणा मिली हो। आचार्य शुक्ल ने जिस स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी है उसका समारंभ यहीं से मानना चाहिए। खेतों में निराई करने वाले स्त्रियों का एक स्वच्छंद चित्र देखिए। खेतन में जल भरियो सस्य उठी ऊपर लहरत, चारहु ओरन हरियाली ही की छवि छहरत। भोरी भोरी ग्राम बधु एक संग मिली गावती, एक सुर में रस भरी गीत झनकार मचावती। धान खेत में बैठी चंचल चखनी नचावती, वन में भटकी चकित मृगी सी छवि छावत। इस काल में जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी रचनाओं के लिए जो घन आनंद की परंपरा में पड़ती है स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने अपनी प्रेयसी श्यामा के विरह में श्यामा स्वप्न, श्याम विनय, श्यामलता, श्याम सरोजनी आदि की सर्जना की। इनमें अकृत्रिम हृदय का उद्गार है। उदाहरण देखिए, सुमायके में नवजोबनी बाला, स्नेह सके की ही भांति दुराए। कहूं बगरावती चीर अधीर समीर, उड़ियो गही के लपटाए। कभू गृह काज के बाज चढ़ी, उत ऊंचे अटा निरखे पिय आए। विलास सहाय प्रमोद भरी, जगमोहन प्रीति छकी दरसाए। धरती धरती डरती पद को, घुंघरू नहीं नेकु बजावती हो। झुकी झाकती भौ चलावती हो, नक बेसर झूमी झुमावती हो। कर में पिचकारी लिए किनको, तुम रंग भिगावन आवती हो। भारतेंदु के समकालीन कवियों की तरह उन्होंने कजलियों की भी लिखी थी। नए विषयों पर भी उनकी स्फुट कविताएं मिलती हैं। रामकृष्ण वर्मा बलवीर, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी ने भी पुरानी चाल की कविताएं लिखी, जिनका ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है। रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन प्रेस से अनेक पुरानी पुस्तकों को छपाकर हिंदी का बड़ा उपकार किया, अन्यथा उनमें से बहुत सी पुस्तकें नष्ट हो जाती। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। वे काशी के कवि समाज के प्राण थे। इस समाज में प्राय समस्या पूर्तियां होती थी। व्यास जी की समस्या पूर्तियां बहुत चाव से सुनी जाती थी। समस्या पूर्ति को समस्या पूर्ति सर्वस्व में संग्रहित किया गया है। पावस पचासा में पावस का उद्दीपन परक वर्णन 50 कवित्व सवयों में हुआ है। ब्रजभाषा काव्य के कवित्व सवयों का लालित्य इनमें नहीं मिलेगा। सुकवि सत्सई में श्री कृष्ण की बाल लीला से संबद्ध 700 सामान्य दोहे संग्रहित हैं। बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों को कुंडलियों में अनुदित किया गया है। उनके अपने कवित्व सवयों और दोहे की अपेक्षा कुंडलियां सरस बन पड़े हैं। खड़ी बोली की कविता, गद्य के लिए खड़ी बोली सुगमता से स्वीकार कर ली गई, पर कविता क्षेत्र में स्वीकृत होने के लिए इसे संघर्ष करना पड़ा। हिंदी में गद्य की कोई परंपरा विकसित नहीं हुई थी, इसलिए खड़ी बोली गद्य को अपना स्थान बनाने में विलंब नहीं लगा। दैनिक जीवन के कार्यों में विचारों के विनिमय में गद्य का माध्यम ही व्यवहारिक होता है। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली गद्य को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, किंतु हिंदी कविता की एक ही परंपरा थी और उसमें अनेक परिनिष्ठित ग्रंथों का निर्माण हो चुका था, अतः उसे सहसा छोड़ देना संभव नहीं था। भारतेंदु तथा उनके समसामयिक कवियों ने गद्य में खड़ी बोली और पद्य में ब्रजभाषा का उपयोग किया। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि खड़ी बोली में कविता करना एकदम नई चीज थी। ईसा की नवी शताब्दी में सिद्धों नाथों के गद्य ग्रंथों में जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उनके पद्य में भी। सरहपात के ऊंचा उच्चा पावत तही बसह सबरी वाली, बब्बर के भौ हा कवीला, उच्चा नियला मज्झा पियला नेता जुअला आदि से इसकी प्राचीनता का प्रमाण मिल जाता है। गोरखबानी हेमचंद्र सूरी के प्राकृत व्याकरण देसी नाम माला आदि में खड़ी बोली में कुछ प्रयोग मिलने लगते हैं। यदि अमीर खुसरो की कृतियों को प्रामाणिक माना जाए तो यह खड़ी बोली का आदि कवि ठहरता है और इस प्रकार खड़ी बोली कविता का समारंभ 13वीं शताब्दी में हो जाता है। वे प्रसिद्ध औलिया शेख निजामुद्दीन 1236 से 1324 ईस्वी के शिष्य थे। कहा जाता है कि वे सन 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली कस्बे में पैदा हुए थे और 1325 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवि मसूर का उल्लेख किया है, जिसने फारसी के अतिरिक्त हिंदी में भी कविता की। मुहम्मद ऑफी ने अपने तजकीरे 1228 ईस्वी में लिखा है कि मसूर ने 2 दीवान फारसी में और 1 हिंदी में लिखा था। शेख फरीउद्दीन शंकर गंजी, जो अमीर खुसरो के समकालीन थे, उनका एक दोहा मशहूर है, सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे दोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। वे मध्यकालीन भारत अंक 2 संख्या इरफान हबीब में संग्रहित मोहम्मद हबीब द्वारा लिखित एक लेख दिल्ली की हजरत अमीर खुसरो से खुसरो की जीवनी और कृतित्व पर अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक जानकारी मिलती है। गयासुद्दीन बलबन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबारी कवि थे। दरबारी में उनकी ही खासी प्रतिष्ठा थी। वे फारसी के अत्यंत उत्कृष्ट कवि थे। उन्हें फिर सोदी, सादी, हाफिज से भी बढ़कर माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया का सूफी रहस्यवाद भी उनमें पाया जाता है। कहा जाता है कि ब्रजभाषा में भी उन्होंने काफी संख्या में कविताएं लिखी, पर वे लुप्त हो गई हैं। खड़ी बोली में लिखी गई उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा बुझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो यो कहे अपने नाम न बोली निवोरी। खड़ी बोली पद्य का कितना साफ सुथरा नमूना है। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिण में मुसलमानों की राज्य स्थापना के साथ बीजापुर गोलकुंडा में दक्षिणी हिंदी को राजकीय प्रोत्साहन भी मिला। वजही गवासी इन्वनिशाती बुहनिदुनुद्दीन जानिम रानाती नुसरती आदि कवियों ने हिंदवी में प्रबंध काव्य और फुटकल कविताएं रची। 17वीं शताब्दी में रचा गया प्रणामी संप्रदाय का ग्रंथ बीतक बहुत खड़ी बोली में ही है। नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आईया और न सूझे काम। 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ का प्रवर्तन हुआ। वहीं पर 13वीं सदी में वारेकरी पंथ का भी आविर्भाव हुआ। इन दोनों पंथ के संतों ने अपनी रचनाओं में जन भाषा खड़ी बोली का व्यवहार किया। वारकरी पंथ में नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि अनेक संत हुए। नामदेव की रचना का एक नमूना दिया जाता है, पांडे तुम्हारी गायत्री लैंधे का खेत खाती थी, लेकर टेंगा टेंगरी तेरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बदल चढ़िया आवत देखा था, मोदी के घर खाना पाका वा का लड़का मारिया था। हिंदी के संत कवियों में कबीर, दादू सुंदरदास, मूलक, धरनीदास, दरिया साहब, पलटू आदि की रचनाओं में खड़ी बोली का पर्याप्त पुट मिलता है। ये संत प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ने तो मसी कागज भी नहीं छुआ था, अतः उन्होंने अपने मत के प्रचारार्थ लोक भाषा का आश्रय लिया। इनकी रचनाओं में अनेक बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है। सगुणों पासक में मीरा की रचनाओं में भी खड़ी बोली का पुट देखा जा सकता है। खड़ी बोली की दृष्टि से रीतिकाल में 2 प्रकार के कवि देखे जाते हैं। एक तो वे जिनके काव्यों में बीच बीच में खड़ी बोली का मिश्रण मिल जाता है, दूसरे वे जिन्होंने ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। पहली श्रेणी में जटमल, वृंद, ग्वाल, भूषण, सूदन आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में आलम, घनानंद, प्रताप सिंह देव, नजीर, वृंदावन जैन, ललित किशोरी आदि। मुसलमान कवियों में तालिब शाह, शेख मुल्लन, हैदर खैरा शाह आदि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने प्रायः गजल, तुर्रे, ख्याल, लावनी और रेखते लिखे हैं। भारतेंदु समय में एक ओर गद्य में खड़ी बोली का व्यवहार हो रहा था, दूसरी ओर पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही बनी हुई थी, किंतु खड़ी बोली लोक रागों लावनी ख्याल तर्रा ठुमरी में सपना में अपना स्थान बना चुकी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नत्था सिंह तालिब, बाबा रामकरण गिरी, बाबा शंभूपुरी, रामप्रसाद आदि तुर्रे वाले थे। कलंगी संप्रदाय के बाबा बनारसीदास प्रसिद्ध लावनी बास थे। भारतेंदु तथा उनकी मंडली के लोग उनसे अप्रभावित न रह सके। उन्होंने भी लावनियों और कजलियों की रचना की। ठुमरियों, संगीतों और नौटंकियों से भी जनता का मनोरंजन हो रहा था, किंतु ठुमरियों संगीतों अमानत की इंद्र सभा 53 ईस्वी में कुत्सित दरबारी रुचि का प्राधान्य था। कदाचित इनके प्रतिकार में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने जातीय संगीत लिखा। समय की मांग के फलस्वरूप उन्होंने खड़ी बोली के कविता लिखने का प्रयास किया। सन 1881 में भारतेंदु ने अपनी खड़ी बोली की कविताएं भारत मित्र में प्रकाशनार्थ भेजी थी। 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी उनकी एक प्रसिद्ध कविता मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन प्यार छंद में छपी थी। उनका एक निबंध है हिंदी भाषा, उसी का एक उपशीर्षक है नई भाषा की कविता। इसी के तहत अपना बनाए हुआ एक दोहा उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है, भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सम लोग, भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सब लोग, सिद्ध होएगा काम और छूटेगा सब सोग। अब देखिए यह कैसी भोड़ी कविता है। उक्त निबंध में ही उन्होंने कहा है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्रानुसार नहीं। स्पष्ट है कि जानबूझकर खड़ी बोली की कविताएं जो संख्या में 2-4 ही हैं, ठीक से नहीं बन सकी हैं। जैसे दशरथ विलाप कविता, कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे, घर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बच्चा था। खुसरो के तर्ज की मुखरियों और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। अंधेर नगरी के चूरन और पाचक बेचने वालों के विज्ञापन गीत भी खड़ी बोली में हैं। सती प्रताप में एक पद्य गान है, तुझ पर काल अचानक टूटेगा, गाफिल मत हो लवाबाज जो हंसी खेल में लूटेगा। सब मिलाकर मंडल के लोगों को कविता के लिए खड़ी बोली ग्राह्य नहीं हुई, लेकिन बहुत दिनों तक किसी भी साहित्य का गद्य एक बोली में और पद्य दूसरी बोली में नहीं लिखा जा सकता। इस दिशा में श्रीधर पाठक की पहले सर्वाधिक प्रशंसनीय है। उन्होंने एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी और जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी खड़ी बोली में लिखा। मुजफ्फरपुर के निवासी अयोध्या प्रसाद ने खड़ी बोली में पद्य लिखने का आंदोलन ही खड़ा कर दिया। उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, इस विषय की ओर पहले पहल बाबू अयोध्या प्रसाद जी का ध्यान गया, बोलचाल की भाषा में कविता अवश्य होनी चाहिए। खत्री जी ने खड़ी बोली की गद्य की पद्य पुस्तक, जिसमें अनेक व्यक्तियों के खड़ी बोली के पद्य संग्रहित हैं, सन 1887 ईस्वी में प्रकाशित की। भारतेंदु का हवाला देते हुए प्रताप नारायण मिश्र और ग्रियर्सन ने इस तरह के प्रयास को कोई अहमियत नहीं दी। मुंशी जी के इस आंदोलन का विरोध ब्रजभाषा के प्रेमियों ने किया। उनकी मुंशी स्टाइल को आदर्श स्टाइल स्वीकार करना श्रीधर पाठक को भी, जो खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे, अच्छा नहीं लगा। इस आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान में नवंबर 1887 ईस्वी से अप्रैल 1888 काफी वाद विवाद चला। इस विवाद में अयोध्या प्रसाद खत्री और श्रीधर पाठक के खड़ी बोली का पक्ष लिया तो प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण गोस्वामी ने ब्रजभाषा का। यह विवाद अपनी जगह था, किंतु भारतेंदु मंडल के प्रायः सभी लोग ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में कविता लिखते रहे। इस आंदोलन के खड़ी बोली का पक्ष प्रबल हुआ और उसके विरोध का स्वर मंद पड़ता गया। फिर भी सरस्वती के प्रकाशन के समय तक पद्य के क्षेत्र में पर्याप्त अव्यवस्था और दुविधा बनी रही। गद्य की व्यवस्था का कार्य भी सरस्वती के माध्यम से ही हुआ। इस प्रकार अध्याय 3 गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ यहीं पर समाप्त होता है।